अध्याय तीन, काशी बसे जुलाहा एक, भाग दो। ये मरजीवा अमृत पीवा, जीवन सी कविता, कविता सा जीवन। विभिन्न साधन पद्धतियों से जुड़े लोगों को का पदानुक्रम यदि कबीर की निगाह से बनाया जाए तो उसमें सबसे नीचे शाक्त और सबसे ऊपर वैष्णव को बेखटके रखा जा सकता है। कबीर अपने दो साथी बताते हैं, एक राम दूसरा वैष्णव। कबीर मेरे संगी दो जन, एक वैष्णव एक राम। वो है दाता मुक्ति का, वो सुमरावे राम। ग्रंथावली साध कौ अंग चार, पृष्ठ संख्या 83। भक्ति या भक्ति का निर्मल वस्त्र सा बताते हुए शाक्त के बारे में कहते हैं, कबीर भगति हजारी कपड़ा, तामे मल न समाई, सखित काली कामरी भावे तहां पर छाई। कबीर भगति हजारी कपड़ा, तामे मल न समाई, साखित काली कामरी भावे तहां बिछाई। ग्रंथावली साथ साखी भूत कौ अंग 13, पृष्ठ संख्या 84। राम रसायन पीने वाले संतों का जीना कबीर के अनुसार उतना ही निश्चित है जितना कि शाक्तों का मरना। शाकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। शाक्त ही कबीर की दृष्टि में ऐसे कबीर प्राणी हैं जिसके सामने राम नाम कहने का, हरि के गुण सुनाने का तक का कोई फायदा नहीं। शाक्त को सुधारने की कोशिश उसी तरह फिजूल है जैसे कुत्ते को उपदेश सुनना या सांप को दूध पिलावा, कौवे को कपूर खिलाना या अमृत से नीम को खींचना। का सुनहा का सुमृत सुनावे, का सासित पै हरी गुण गावे, का कौआ को कपूर खवाए, का विसहर को दूध पिलावे, सहित सुनहा दोनों भाई, वो नींदे वो भौकत जाई, अमृत ले ले नीब चित जाई, कहे कबीर वाकी बनी न जाई। आसावरी 19, ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 277। यदि पद आदि ग्रंथ में राग आसा में संकलित है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब खंड 1 पृष्ठ संख्या 480 पद में वौ नीदय पर विशेष ध्यान जाता है, शाक्त निंदा करता है। यूं तो शाक्त भी अन्य साधना पद्धति की आलोचना करते ही होंगे जैसे स्वयं कबीर करते थे, लेकिन अपनी आलोचना के किसी और लक्ष्य के बारे में कबीर नोटिस तक नहीं लेते कि वह भी उनकी आलोचना कर सकता है। जिसकी स्वयं आलोचना कर रहे हैं उसके बारे में यह बात कबीर सिर्फ यही कह रहे हैं कि वह भी निंदा करता है। बात सामान्य निंदा प्रतिनिंदा से कुछ आगे कोई व्यक्तिगत सी प्रतीत होती है। कबीर ही शाक्तों में इतने चिढ़े हुए नहीं, मामला दो तरफा है। निंदा को समझते हुए शाक्त भी कबीर की निंदा करता है, कबीर नोटिस लेते हैं इस निंदा का, हालांकि निंदा को समझते कुत्ते के भौंकने जैसा ही है। शाक्त निंदा करते रहते हैं, कबीर अपने दो संगियों मुक्तिदाता राम और राम स्मरण कराने वाले वैष्णव का स्मरण करते रहते हैं। बाजार में कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपना राह चलता रहता है, क्या कारण होना चाहिए इतनी तीखी परस्पर चिढ़ का। जिस समूह के जुड़े रहकर आप कट जाएं, उसके साथ आपके संबंध कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण हो जाते हैं। नापसंदगी में सैद्धांतिक से कहीं ज्यादा मानी खेज व्यक्तिगत आयाम जुड़ जाता है। भूतपूर्व स्वयं सेवक संघ के कठोरतम आलोचक होते हैं और भूतपूर्व कॉमरेड कम्युनिटी पार्टी के अनंतदास का संकेत तो महत्वपूर्ण है। शाक्तों के साथ बहुत समय नष्ट किया है, अब तो बस हरि स्मरण से ही निर्वाह करना है। बहुत दिन साकत में गईया, अब हरि के गुण लय निर्वहिया। स्वयं कबीर अपने जीवन में भक्ति साधना का आरंभ 30 वर्ष की आयु से बताते हैं। जब तक वे अशुद्ध साधना में लगे रहते थे, गुरु की कृपा से गोपाल की पुकार आने पर शाक्त साधना का अशुद्ध मंदिर छूटा, आंखों से पछताए के आंसू बह निकले और कबीर सच्ची भक्ति की राह पर चल दिए। 12 बरस बालपन में बीते, 20 बरस कछु तपु न कियो, 30 बरस कुछ देव न पूजा, फिर पछुतावा विरधि भयो, चरण सीसु कर कंपन लागे, नैनी नीरु असार बहे, जिह्वा बचनु सुधु नहीं निकसे, तब रे धर्म की आस करे, हरि जीव कृपा करे, लिव लाहे लाहा हरि हरि नाम जियो, गुरु प्रसादी हरि धनु पाइयो, अंति चल दिया नाली चलियो, कहत कबीर सुनहु रे संतहु, अनुधनु कछुए न गइयो, आई तलब गोपाल राय की, माइया मंदिर छोड़ी चलियो। राग आसा 15 श्री गुरु ग्रंथ साहब खंड 1 पृष्ठ संख्या 479। कबीर वैष्णव को अपना राम सरीखा संगी कह सकते थे क्योंकि उनके वक्त में वैष्णव होने का अनिवार्य अर्थ गौड़ीय संप्रदाय का सदस्य पुष्टि मार्ग का पथिक या स्मार्ट मत का अनुयायी होना नहीं था। वैष्णव शब्द को इन संप्रदाय सापेक्ष अर्थों तक सीमित किया 19वीं और 20वीं सदी के ज्ञानकांड ने। कबीर के समय में तो खुद को न हिंदू न मुसलमान कहने वाले पौराणिक मान्यताओं का खंडन करने वाले रामानंदी वैरागी भी वैष्णव ही कहे जाते थे और सभी अवतारों की अपेक्षा कर मनेर मानुष की साधना करने वाले बाउल भी। वैष्णव शब्द का व्युत्पत्ति परक आशय विष्णु के किसी न किसी अवतार को मान्यता देने वाले से है, लेकिन औपनिवेशिक आधुनिकता के पहले दैनंदिन व्यवहार में इसका उदार और रेडिकल अर्थ ही अधिक लोकमान्य था। इस उदार अर्थ से बचने के लिए पुष्टि मार्गी वैष्णव सिवाय पुष्ट मार्गियों के किसी को भी वैष्णव नहीं मानते थे। उनकी परिभाषा वैष्णव होने के लिए विष्णु के किसी अन्य अवतार का तो क्या स्वयं कृष्ण का भी भक्त होना पर्याप्त नहीं था। आचार्य महाप्रभु के प्रति समर्पण पुष्टि मार्गियों के लिए कृष्णार्पण से ही अधिक जरूरी था। ऐसे समर्पण का अभाव देखकर वे पुष्ट मार्गी सज्जन मीराबाई की गलियां लेकर चले आए थे। औपनिवेशिक आधुनिकता ने इस संकीर्ण सांप्रदायिक अर्थ को ही वैष्णव शब्द के एकमात्र अर्थ की प्रतिष्ठा दे डाली। औपनिवेशिक आधुनिकता में रचे बसे विद्वानों की स्मृति से वैष्णव शब्द का वह व्यापक अर्थ गायब हो गया जो आरंभिक आधुनिकता काल में सर्वमान्य था और लोक प्रचलित में आज भी मान्य है। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के लोकवादी जनवादी विद्वानों के लिए यह समझना भी मुश्किल हो गया कि कबीर स्वयं और आरंभिक आधुनिक काल के अन्य स्रोत कबीर को वैष्णव ही क्यों बताते हैं। यह देख पाना संभव नहीं कि किस समय उस समय उपलब्ध साधना परक पहचानों में से किसी के साथ कबीर जुड़ाव लगाव महसूस कर सकते थे, तो जाति कुल संप्रदाय निरपेक्ष वैष्णवता से ही। यह पहचान कबीर को ही नहीं सभी को छूट देती है कि अपनी अपनी वैचारिक और साधना परक विशिष्टताओं के साथ वैष्णव के रूप में पहचाने जा सकें। शर्त एक ही थी, जन्मजात ऊंच नीच और जीव हत्या के विचार से दूर रहें। कबीर ऐसे ही वैष्णव को अपना राम जितना ही प्यारा संगी बताते हैं, स्मार्ट वैष्णव को नहीं। कबीर के कनिष्ठ समकालीन और परम प्रशंसक पीपा भी नाभादास के शब्दों में प्रथम भवानी भक्त ही थे, फिर स्वयं शक्ति के बताने पर सुदृढ़ हरि शरण में आए। दोनों का संबंध रामानंदी वैष्णवता से था। दोनों सहज के साधक थे और रामानंद की इस उक्ति से प्रभावित सहज सुनी मैं नित बसंत, सहज के साधक देशभाषा के विचारक रामानंद को संस्कृत के भाष्यकार आचार्य में बदलने का काम भी औपनिवेशिक आधुनिकता की कृपा से ही हुआ। पांचवें अध्याय में यह कथा आप विस्तार से पढ़ेंगे। कबीर के स्वभाव को मूल विशेषता यह थी कि स्वतंत्र चेता जिज्ञासा। इस विशेषता का ही रेखांकन उन किंवदंतियों से हुआ जिनमें वे स्वयं रामानंद द्वारा अपना गुरु का श्राद्ध करने वाले पर सवाल उठाते सुनाई पड़ते हैं। कबीर रामानंद की सहज साधना परक जाति कुल निरपेक्ष वैष्णवता से जुड़े मुंडियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। वैष्णव को राम जैसा ही मूल्यवान संगी साथी माना, लेकिन अपने व्यक्तित्व को बनाए रखते हुए, आलोचना के अधिकार को बनाए रखते हुए, इस तरह का संबंध उन लोगों की समझ से बाहर ही है जो किसी विचार या परंपरा से जुड़ने का अर्थ किसी अनुशासित फौज में शामिल होना मान बैठे हैं, जिन्हें व्यक्तियों और समुदाय के संबंध में रेजिमेंटेशन अनिवार्य लगता है। ऐसे ही कुछ पुरुष बड़े ठसके से सवाल उठाते हैं और सुधी पुरुषों की प्रशंसा प्राप्त करते हैं। कबीर यदि वैष्णव होते तो वैष्णव की बुराई क्यों करते? इस सवाल की परिणति यह है कि भारतीय समाज की बुराई करने वाले भारतीयों की भारतीय नहीं माना जा सकता और अमेरिका समाज के आलोचक अमेरिकी को अमेरिकी नहीं माना जा सकता। वैसे सवाल यह भी बनता है कि चूंकि कबीर ने कहीं भी मनु की बुराई नहीं की तो क्या वे मनुवादी थे? अपने साईं को बाणिया कहते थे तो क्या जाति के बनिए थे? कबीर की जिज्ञासा ब्रह्मांड के बारे में थी, ब्रह्मांड के साथ मनुष्य के संबंध के बारे में भी। समाज के बारे में भी थी और व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में भी थी। भीतर के बारे में भी कबीर जिज्ञासु थे और बाहर के बारे में भी। उनका सारा जीवन भीतर बाहर के निरंतर संबंध को कह सुन सकने वाले सबद निरंतर की खोज का अनुष्ठान है। उनकी सारी यात्रा इस निरंतरता के पूरेपन का पा सकने की यात्रा है। यात्रा में उतार चढ़ाव तो बहुत आए, लेकिन उसकी परिणति ऐसे आत्मविश्वास में ही हुई कि यात्री कह सका, कहे कबीर मैं पूरा पाया। कबीर की जिज्ञासा यात्रा आरंभ हुई थी शाक्त साधना से। इसी साधना की मूल्य मान्यता थी वामा भूतवा यजेत परम। परम भक्त तत्व को भजना है तो अपने भीतर के नारित्व को सक्रिय करो। हल्के लोगों के हाथ में इस मान्यता ने अतिरेकी रूप ले लिया और नाथपंथियों में इसकी प्रतिक्रिया हुई और वे अतिरेक के दूसरे छोर पर चले गए। उन्होंने प्रेम श्रृंगार और रसात्मकता मात्र को देश निकाला दे दिया। स्वाभाविक ही था कि उनकी साधना उपदेश के आदेशों में ही अभिव्यक्त हो सकी। कविता के शब्दों में नहीं, कबीर ने साधना के प्रेम का और नारित्व की साधना का पुनर्वास किया। उन्होंने घोषणा की कि काम मिलावे राम सु, और चेतावनी भी दी जो कोई जाने साधी वामा भूतवा यजेत परम की सलाह पर स्वयं अमल करते। कबीर कविता में नारी रूप धारण करते हैं, साथ ही सामाजिक धरातल पर ठेठ विरक्त मुहावरे में नारी निंदा भी करते हैं। उस नारी निंदा के तीखेपन की पृष्ठभूमि में शाक्तों के साथ कबीर के संबंधों का तीखापन भी मौजूद है। यह तीखापन न आता तो यदि कबीर अर्थ को ही इति भी मान लेते, शाक्त साधना से आरंभ कर वहीं रुक जाते, आगे चल भी दिए तो लिहाज करके चुप रहते। लेकिन कबीर तो कबीर थे, जो बात नहीं सुहाती नहीं सुहाती, जो नहीं सुहाती थी उसकी आलोचना करते थे। चुनिंदा चुप्पी और चुनिंदा शोर वाली रणनीति उन्हें नहीं जमती। यात्रा शुरू करते ही थक कर या खुश होकर बैठ जाना भी उन्हें नहीं आता था। काम मिलावे रामसु के व्यावसायिक नतीजे और औरों के लिए जो भी हो, कबीर के लिए तो इस बात से सवाल ही पैदा होता था, प्रेम से यदि राम मिल सकते हैं तो उन्हीं राम के पसारे संसार में मनुष्य प्रेम से क्यों नहीं मिल सकते। कबीर केवल अपने राम से ही प्रेम का रिश्ता नहीं बनाते, संसार के सभी मनुष्य में राम का ही रूप निहारते हुए वे सामाजिक संबंधों की मूल कसौटी भी प्रेम को ही बनाना चाहते हैं। कबीर इस अर्थ में सचमुच रहस्य सार्थक थे कि वे अनेक रहस्यों का रहस्य जानना चाहते थे। उनकी जिज्ञासा केवल घट भीतर के रहस्यों पर सीमित नहीं थी, वे बाहर के जगजीवन के संबंध का समाधान भी करना चाहते थे। शाक्त साधना कबीर की जिज्ञासा का आरंभ या एक पड़ाव ही हो सकती थी, परिणति नहीं। वहां से शुरू करके वे नाथों सूफियों और रास्ते में भी गुजरे और आखिरकार जो पहचान उनके साथ चली, जिसे उन्होंने खुद भी अपनाया, वह वैष्णव की ही थी। जाति कुल संप्रदाय निरपेक्ष वैष्णवता के साथ कबीर का विशेष संबंध वे स्वयं भी स्वीकार करते थे और दूसरे भी। कबीर के मुस्लिम परिवार के लिए यह विगूचन और परेशानी की स्थिति थी। दुनियादारी निभाने की बजाय भजन सत्संग करते फिरते रहने वाले, सत्ताधारियों को चिढ़ाते रहने वाले बेटे की माँ को स्वाभाविक रूप से लगता था कि बेटा कुलरीति से भटक गया, बेराह हो गया। वह इसका दोष उन मुंडियों पर ही रखती थी जिनके चक्कर में बेटा हाथ से निकल गया और रोती थी इन मुए घर बिगाड़ू मुंडियों का कुछ बिगड़ता भी नहीं। हमरे कुल कौने राम कहियो, जबकि माला लई निपूते, तब से सुख न भइयो, सुनहु जेठानी सुनहु देरानी, अचरज एक भइयो, सात सूत न मुंडिये खोए, यह मुंडिया किए न मुइयो। श्री गुरु ग्रंथ साहब राग बिलावल 4, श्री गुरु ग्रंथ साहब खंड 1, पृष्ठ संख्या 856। बेटा माँ का दर्द समझता था, इसलिए तो अपनी कविता में अपने उस दर्द को भी दर्ज किया। लेकिन करता क्या, जो राह उसने चुन ली थी उस पर चलने के लिए माँ की निगाह में बेराह होना तो उसकी अब उसकी नियति थी। माँ का दर्द दर्ज करने के साथ कबीर ने अपनी कविता में यह बात भी दर्ज की है कि उन्होंने माँ नीमा को समझाने की कोशिश की, बताया कि कुलरीति मिले न मिले, इन मुंडियों से उनका मन मिल गया है, क्योंकि हम दोनों का एक मन ही दाता के रंग में रंगा। कहत कबीर सुनहु मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुरु ग्रंथ साहब खंडेक पृष्ठ संख्या 524। मल मिलने का कारण एक ही दाता रघुराई का होना तो था ही, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था मुंडियों के लिए जातिगत ऊंच नीच का अप्रासंगिक होना। कहा तो कबीर, सुनहु मेरी माई, इन मुंडियन मेरी जात गमाई। आदि ग्रंथ का संकलन 1604 में हुआ था। उस समय रामानंदी वैरागी वैष्णवों को मुंडी और सैफ सन्यासियों को दंडी ही कहा जाता था। आदि ग्रंथ के कोई 50 साल बाद मुबासा दाबिस्ताएं मजाहिब में दंडियों द्वारा मुंडियों के भयानक उत्पीड़न को सूचना देते हैं। उस उत्पीड़न के बचने के लिए 17वीं-18वीं सदी में मुंडिया वैष्णवों को भी अपने सैनिक संगठन खड़ा करना पड़ा था। दंडियों द्वारा मुंडियों के उत्पीड़न का सैद्धांतिक प्रतीकात्मक कारण यही था कि स्मार्त मदानुयायी शैव लोग संन्यास लेने को ब्राह्मणों का विशेषाधिकार मानते थे और मुंडी अब्राह्मणों शूद्रों को भी वैरागी बनाकर कबीर जैसे मिलेक्षों तक को मान्यता तक इस विशेषाधिकार को चुनौती देने का अपराध करते थे। कबीर की कविता एक भूरे इंसान भरे पूरे इंसान की कविता है। इनकी वाणी सुरझाव निहारी जरूर है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे उपदेश सुरझावन हारे होते हैं। वह सुरझावन विहारी इस अर्थ में है कि उसी के जरिए कबीर अपनी उलझनों से टकराते हैं और आपको भी बुलाते हैं। कबीर की कविता पैगंबर का इल्हाम नहीं, इंसान की आवाज़ है। ऐसे भरे पूरे इंसान की आवाज़ जो कभी अपनी उपलब्धि पर खुशी से नाच रहा तो कभी विरह में तड़प रहा, कहीं उलट बांसी के जरिए लोगों को बुद्धि का चुनौती दे रहा, दुनिया के बेतुकेपन पर हंस रहा है तो कहीं संसार की जड़ता पर रो रहा है, कहीं कहीं अपनी बातों को समेत हर बात को विवेक की कसौटी पर कसने की सलाह दे रहा है तो कहीं गुरु के प्रति कृतज्ञता ही नहीं संपूर्ण समर्पण की घोषणा कर रहा है, कहीं वामा भूतवा यजेत परम के निर्देश पर अमल करते हुए कविता में नारी बन रहा है तो कहीं नारी मात्र का नरक का द्वार ठहरा रहा है। कवि को धर्म गुरु बनाने पर आमदा लोगों को ये सब अपाच्य अंतर विरोध लगते रहे हैं कि असल में ये सब बातें कबीर की इंसानियत की पहचान है। वे निस्संदेह पहुंचे हुए कबीर थे, लेकिन जिस घर तक पहुंचे थे वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने लंबा मार्ग तय किया था। उनकी कविता इस लंबे मार्ग पर आई चुनौतियों और पड़ावों की अकथ कहानी है। इस मार्ग पर केवल अंदर की चुनौतियां ही नहीं थी, बाहर के संकट और प्रलोभन भी थे। दोनों के स्रोत स्विनी एक ही थी, कबीर की कविता, कबीर की भक्ति। इसी के कारण कुछ लोग भक्त कबीर के भक्त बने तो कुछ ने मगरूर जुड़ाहे को सबक सिखाने की ठानी। इसी के कारण कबीर माँ बाप कुटुंबी दुखी थे। उसी के कारण कबीर को एक ही दाता रघुराई के सेवकों मुंडियों और दूसरे का नया कुटुंब मिला, लेकिन अनुभव के साधक का आदि अंत आखिरकार तो राम पर ही निर्भर था। कुटुंब कोई भी हो, कबीर की यात्रा चलनी तो राम की छाया में ही थी। अनंतदास के शब्दों में बाहिर बैरी अरु घर माही रहे कबीर राम की छाही, भगत कौ बैरी सब संसारु आदि अंत हरि राखन हारू। कबीर ने कवि की छाया के ही नहीं, घट भीतर के ही नहीं, दुनी दीवानी के प्रलोभनों और वैर के अनुभव भी कविता में दर्ज किए। लेकिन चूंकि कबीर को कवि की तरह पढ़ा ही नहीं गया, इसलिए ऐसे कई अनुभव कोरी अलौकिकता के चश्मे से पढ़ लिए गए हैं। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि मुक्तकों के संकलन होने के बावजूद आदि ग्रंथ, ग्रंथावली और बीजक तीनों में कई रचनाएं आख्यान और संवाद की रचना करती हैं। उन्हें अलग अलग पढ़ना कवि के उन लौकिक जीवानुभवों के मार्मिक साक्ष्य में से वांछित होना जिन्होंने उसके आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध तर बनाया। राग सुरठी की ये दो पद देखें, नैक निहारी हो माया विनती करई, दीन बचन बोलई करे जोरई फुनी फुनी पाई परई, कनक लेहु जेहु जेता मनि भावे, काम ही लेहु मन हरनी, पुत्र लेहु विद्या अधिकारी राज लेहु सब धरनी, अठि सिधि लेहु तुम हरि के जना नव निधि तुम आ गई, ते पापनी सबै संघारे काको काज संवारियो, जिनी जिनी संग कियो है तेरो को बेसासी न मारियो, दास कबीर राम के सर नहीं छाड़ी झूठी माया, गुरु प्रसाद साथ की संगत तह परम पद पाया। एक बार इधर ले पांव एक बार इधर देख लो, पांव पड़ती हूँ। कनक कामिनी पुत्र राज निधि, कौन सी सिद्धि है जो तुम्हें चाहिए, तुम बोलो तो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, माया पर विश्वास करके कौन बचा है, किसका काम बना है। मैं तो अपने राम की शरण ही भला समझता हूँ, मुझे तो गुरु के प्रसाद और सत्संग के कारण परम पद मिल चुका है, अब पाने इनको बचा ही क्या। दूसरा पद देखें, तुम घर जाहूं हमारी बहना, विस लागे तुम्हारे नैना। अंजन छाड़ी निरंजन राते, ना किसी को देना। बलि जाऊं ताकि जिन तुम पठई, एक माई एक बहना। राती खंडी देख कबीरा, देखी हमारा सिंगारो। सरग लोकित है हम चली आई, करन कबीर भतारो। श्रग लोक में क्या दुख पणिया, तुम आई कली माही। जाति जुलाहा नाम कबीरा, अजहु पति जो नाही। तहां जा सुजहां पाट पटंबर, अगर चंदन घसी लीना। आई हमारे कहां करोगी, हम तो जात कमीना। जिनी हम साजे साज निवाजे, बांधे कांचे धागे। जे तुमह जतन करो बहुतेरा, पाणी आग न लागे। साहिब मेरा लेखा मांगे, लेखा क्यों कर दीजे। जे तुम जतन करो बहुतेरा, तव पाहन नीर न भीजे। जाकी मैं मछ सो मेरा, मछा सो मेरा रखवालो। टुक एक तुम्हारे हाथ लगाऊं, तो राजा राम रिसालू। जाते जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। आसी पासी तुम फिर फिर वैसो, एक माऊ एक मासी। ग्रंथावली राट सोरठी पद 8-9 पृष्ठ संख्या 308। तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम्हारी आंखों में लगा अंजन। काली मुझे जहर कसा लगता है, मेरी लौ तो निरंजन में लगी है। बलिहारी है उनकी तुम्हार, जिन्होंने तुम्हें मुझे लुभाने के लिए पठाया है। ऐसा क्या कमी तुम्हारे स्वर्ग में पड़ गई, जो तुम मेरे कलयुग में चली आई। तुम्हारे काम का क्या रखा है इस जुलाहे के पास, वहां जाओ जहां रेशमी कपड़े हों, चंदन की खुशबुएं हों। उस कमीन जात जुलाहे के पास आकर क्या करूँगी, मैं तो किसी और के ही कच्चे धागे में बंधा हुआ हूँ। क्या जवाब दूंगा उसे, कितने भी जतन कर लो, पानी में आग नहीं लगने वाली। तुम्हें छू भी दूंगा उस, तुम्हें छू भी लिया तो तेरा राजा राम रूठ जाएगा। मैं जुलाहा तो दुनिया से उदासीन, वन वन भटकता हूँ। हाँ, यदि मुझसे सच्चा लगाव ही हो गया हो तो आओ चलो तुम भी भटको मेरे साथ, एक माँ बन जाओ और एक मासी। कबीर बात माया से ही कर रहे थे, लेकिन अमूर्त अवधारणा माया से नहीं, हाड़ मांस की रमणी के रूप में उन्हें लुभाने के लिए भेजी गई माया से है। जिस स्वर्ग से ये रमणियां आईं, वह किसी परलोक में बसा स्वर्ग नहीं, परजीवी सामंतों और पुरोहितों की अय्याशी का स्वर्ग है। उसी स्वर्ग के स्वामियों ने इन स्त्रियों को कबीर की सेवा में भेजा। वे स्वयं कबीर के व्यक्तित्व पर मोहित होकर उन तक नहीं पहुंची। जो लोग कबीर की उदासी का पर्दाफाश करना चाहते हैं, वे इन स्त्रियों को बीच बस चीज की तरह बरत रहे हैं। कबीर इन स्त्रियों को कोस नहीं रहे, बल्कि माँ और मासी कह रहे हैं। अनंतदास इस घटना का विस्तृत वर्णन करते हैं। अप्सरा के साथ कबीर की बातचीत जिस शब्दावली में बयान करते हैं, वह शब्दावली स्वयं कबीर की शब्दावली के साथ समानता के कारण तुरंत ध्यान खींचती है। मघिम नाम कमीन हमारा, जहाँ जाहूँ तहाँ राज कंवारा। गोरा मेद कपूर जुबाती, अग्र कछोआ अरु फूल बाती। सकल भोग राजा के कीजे, पाथर कैसे पानी भीजे। नीची दृष्टि कबीर तुम्हारी, देखो मेरा रूप निहारी। अनंत दास के वर्णन की अप्सरा काफी बेधड़क भी थी। जब लग लिया न सुख हमारा, तब लग झूठा जन्म तुम्हारा। इतनी मानो बात हमारी, बहुत नहीं तो राखो दिनचारी। अनंतदास के बखान में कई टुकड़े कबीर के पदों के लगभग ज्यों के त्यों चले आए हैं। सुरग लोक तय कैसे आई, कैसे करी हमारी चाही। तेरे हाथ न आऊं माई, साहिब मेरा राम रिसाई। नैन बैन विष लगे तुम्हारा। कबीर के ये पद किसी तटस्थ स्थिति के उचारे जा रहे आप्तवचन नहीं, अपने आत्मसंघर्ष का बयान करते काव्य शब्द हैं। रोजमर्रा के अनुभवों को करुणा, विडंबना, बोध और विचार के संदर्भ में रखते हुए संवेदनशील चित्त से फूटती कविता के शब्द, माया के प्रति निर्लिप्तता घट भीतर के अनुभवों की प्रामाणिकता और बाहर संसार की अनुभय आलोचना ने कबीर की लोकप्रियता बढ़ा दी। वे तो अपने राम पर रिझे थे और उसी को रिझाना चाहते थे, लोग कबीर पर रिझने लगे जो कबीर के वचनों और चमत्कारों के मुरीद हो गए थे। रिझने वालों में साधारण जन तो थे ही, बर सिंहदेव, वीर सिंह, देव जैसे राजा भी थे। कबीर की लोकप्रियता और उसके कारण कबीर की उप बढ़ती हुई चली जा रही थी। इस लोकप्रियता के कारण कबीर को सुमिरन का एकांत मिलने में बाधा जो पड़ रही थी, कबीर ने लोकप्रियता से पिंड छुड़ाने के लिए कौतुक रचा। एक दिन सुबह सुबह किसी वेश्या को पकड़ा और उसके गले में बांह डालकर निकल पड़े नगर की सैर करने। हाथ में एक बर्तन में चरणामृत भर लिया और जताने यूं लगे जैसे कि शराब पी रहे हैं। दिन दिन भीत होत अधिकाई, सुमिरन करत चित्त चल जाई। तब कबीर एक बुद्धि विचारी, लोक बड़ाई धर्म उतारी। प्रात समय गणिका के गयूं, लीनी संग अचंभव भयूं गनी। गहे बांह गणिका के घाली, गणिकाए मिली कबीर संग चाली। भरी करई चरणौदिक लीनो, मद के धोखे करी पीनो। काशी में स्कैंडल हो गया, हरिजन शोक में डूब गया, विरोधी हंसी उड़ाने लगे। जिसे देखो आजकल भक्त बना घूमता है, अरे नीच लोग क्या भक्ति करेंगे, इन भगत कबीर को ही देख लो। 10 रोज की भक्ति के बूते पूजने लगे थे, अब गणिका के गले में बांह डाले घूम रहे हैं। भगत किया चाहे सब कोई, नीच जाति तय कैसे हुई। दिन 10 भगत कबीर कीन्ही, अब देखो गणिका संगी लीनी। कबीर इस तरह काशी के राजा के यहाँ जा पहुंचे। वहां कबीर का बहुत आदर करता था, उठकर आसन देता था, लेकिन आज तो उसने अपेक्षा ही की। एकाएक कबीर के हाथ से लिए बर्तन का पानी जमीन पर फैला दिया। राजा ने पूछा क्यों, कबीर ने कहा जगन्नाथ जी के पंडा के जले पांव की तपन बुझाने के लिए। राजा ने उसी वक्त तारीख वक्त नोट कर संदेश वाहक पुरी को रवाना किए। 10 दिन बाद आकर उन्होंने बताया कि हाँ, एन उसी वक्त कबीर ने स्वयं पुरी आकर पंडा का जला पांव ठीक किया था। चमत्कार की भाषा जो बात पढ़ने का न्योता दे रही थी वह यही है कि कबीर को लोक बड़ाई से नहीं भक्ति से ही वास्ता था। यह बात दूर दूर तक काशी से पुरी तक जाहिर हो चुकी थी। कबीर पर भर मुंह हंसने वाले को मुंह की खानी पड़ी। अब कबीर पर हंसने वालों को मुंह की खानी पड़ी और बर सिंहदे ने घर आकर कबीर से माफी मांगी। इन सब से विरक्त राम नाम के साधक कबीर अपने खुद के नाम को तो वैसे ही मिटाने की कोशिश कर रहे थे जैसे सुशील स्त्री अपना गर्भ छिपाती है, लेकिन क्या फायदा, जैसे गर्भ दिनों दिन बढ़ता है वैसे ही कबीर का नाम भी बढ़ रहा था। कबीरा अपना नाम मिटावे, ज्यों कुलवंती गर्भ दुरावे। दिन दिन प्रकट होत है सोई, करिनी कैसे छानी हुई। यह एक नहीं अनंतदास के विवरणों से कबीर के व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं तथा जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का भी विश्वसनीय बोध और भांति भांति के लोगों द्वारा भांति भांति के उद्देश्य सिद्ध करने के लिए रची गई कबीर छवियों की परख का आधार प्राप्त होता है। बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कबीर की कविता को उपयोगी मानते हैं। आज हिंदू मुस्लिम या किन्हीं भी समुदाय के बीच एकता का आशय यह हो गया है कि किसी परंपरा के अंधविश्वास और कुरीतियों की कोई आलोचना न की जाए। धार्मिक सांस्कृतिक अस्मिताओं के दावों को मानवीय मूल्यों और व्यापक सामाजिक चिंताओं से ज्यादा मूल्यवान माना जाए। भावनाओं के आहत होने का पूरा कारोबार तरह तरह के अस्मितावादी राजनीति के कारण जोर शोर से चल रहा था। हालत यह है कि चुटकुलों तक पर रोक लगाने की मांगें उठ चुकी हैं। कबीर आज के उत्तर आधुनिक समय में भी भावनाएं आहत करने के अपराधी ठहराए जाते हैं, जैसे उस आरंभिक आधुनिक काल में ठहराए गए थे। हर तरह का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सत्ता तंत्र जस का तस दनाता रहे। लोग विवेक को तिलांजलि देकर अस्मिता, आस्था और भावना की राजनीति के शिकार बने रहे और इनकी उनकी एकता के दावे के लिए जाते रहे किए जाते रहे ऐसी एकता कबीर नहीं चाहते थे, भी नया पंथ निकालना भी नहीं चाहते थे। उनका रास्ता तो निज ब्रह्म विचार का, निर्भय होकर निर्गुण के गुण गाने का, राम से भी और समाज से भी परस्पर सम्मान और समानता का रिश्ता बनाने का रास्ता था। इसी पर चलने का न्योता वे अपने कविता में देते थे। कबीर के समकालीन उनके प्रशंसक हो या विरोधी, उनकी विशेषता भली भांति समझते थे। उनकी कविता एक यदि करती तो उनकी उन्हीं को करती थी जो सामाजिक पहचान से ज्यादा मूल अनुभव, अनभय और अनुभव को मानते थे। बाकी लोगों के बारे में तो अनंतदास बताते हैं कि काशी के हिंदू और मुसलमान नेता, भद्रजन, अपने अपने समुदाय के नेतृत्व का दावा करने वाले प्रतिनिधि गण कबीर का कविता के कारण नहीं बल्कि उसके विरुद्ध एक होकर पहुंचे थे सिकंदर लोदी के हुजूर में। बादशाह हैरान परेशान एक अदना जुलाहे ऐसा क्या गजब ढा दिया, पूछने लगा, भाई मामला क्या है, उसने क्या किसी का माल मार लिया है, किसी की जमीन दबा ली है, गांव परगना छीन लिया है। काशी के हिंदू मुसलमान प्रतिनिधियों का जवाब लाजवाब है, लाजवाब और दो टूक। उनकी मांग भी उतनी ही स्पष्ट है। इस अमारक चलने वाले हिंदू मुसलमान दोनों से न्यारा चलने वाले आजकल के मुहावरे में मन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कबीर को फौरन काशी से निकाल दिया जाए। कहे सिकंदर क्या है भाई, गांव प्रगना लई छिनाई, गांव प्रगना नहीं लिया, जुलाहे एक अमारक किया, मुसलमान की छोड़ी रीति, अरु हिंदू की भाने छीती, नींद तीरथ, नींद वेदू, नींद नवग्रह सूरज चंदु, नींद शंकर, नींद माई, नींद सादर गणपति राई, नींद ग्यारस होम सराध्य, नींद बाभन जग आराध्य, नींद माता पिता की सेवा, बहन भाणिजी अरु सब देवा, नींद सकल धर्म की आशा, सट दर्शन अरु बारह मासा, ऐसी विधि सब लोक बिगारा, हिंदू मुसलमान तय न्यारा, ताते हमें माने न कोई, सब लग जुलाहा काशी हुई। मुसलमान होते हुए भी उसने मुसलमान की रीति रिवाज त्याग दिए, हिंदुओं के रीति रिवाज की भी निंदा की, वेद तीर्थ नवग्रह व्रत श्राद्ध सभी की निंदा की, और तो और जगत के पूज्य ब्राह्मणों की निंदा की करता है। हिंदू मुसलमान दोनों से न्यारे इस कबीर ने लोगों को बिगाड़ दिया है, इसके काशी में रहते हमारी कोई नहीं सुनने वाला। असली संकट यही है कि ताते हमें माने न कोई, हासी तक सीमित आवाज होती कबीर को तो मुल्लाओं और ब्राह्मणों के साथ सिकंदर को जहमत न देनी पड़ती, खुद इस आवाज से निपट लेते। यह एक और धर्म की स्थापना के लिए उत्सुक आवाज होती तो भी शायद एडजस्टमेंट हो जाता। ऐसी आवाज कभी मुल्लाओं के विरुद्ध ब्राह्मणों के काम की होती तो कभी ब्राह्मणों के विरुद्ध मुल्लाओं के काम की, लेकिन यह तो धर्मसत्ता मात्र के विरुद्ध मनुष्य के आत्मसत्ता की आवाज है। तरह तरह की सामाजिक अस्मिताओं के प्रवक्ताओं के विरुद्ध विवेकान व्यक्ति सत्ता की आवाज है। जो व्यक्ति यह आवाज दे रहा है उस पर न प्रलोभनों का असर हो रहा है, न घर वालों के समझाने बुझाने का, यह आदमी खतरनाक है। ऐसे खतरनाक आदमी के विरुद्ध उसकी कविता के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों दोनों के प्रतिनिधि एक हैं और उनका माई बाप भी एक ही है। दिल्ली के तख्त पर बैठा सुल्तान गुहार तो वही लगनी थी, ऐसी विपत्ति निवारी हमारी, तू ही बाप तू ही महतारी। सुल्तान ने तुरंत कबीर को तलब किया, सफाई मांगी। कबीर का आलम यह है कि राम भरोसे गिने न काहू, सब मिली राजा रंक रिसाऊं, राखन हारा राम है मारी सके न कोई, पातिस स्याही हूं न डरू, करता करे सो होई। राखनहारे राम के भरोसे किसी की परवाह न करने वाले, बादशाह से भी न डरने वाले कबीर को डराने के लिए, अमारक करने वाले जुलाहों को सबक सिखाने के लिए मदमस्ती हाथी छोड़ा गया। वह जुलाहे को तो क्या डराता, स्वयं ही चीखे मारता हुआ वापस भाग गया। कबीर को जंजीरों में बंधा गया, बांध गंगा में डुबोया गया, लेकिन डूबने की बजाय वह मृगछाल पर बैठे राम नाम जपते नजर आए। उनके अपने ही शब्दों में, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। आखिरकार कबीर को आग में फेंक दिया गया, लेकिन आग भी पानी सी हो गई और आग ने भी उन्हें पिता का सा वात्सल्य दिया। या शायद पिता नीरू ने ही जान पर खेलकर अपने बेटे को बचा लिया। भयो हुतासन जैसे नीरू, आदि ग्रंथ और ग्रंथावली दोनों में संकलित एक पद बिलावल पद चार, ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 363 में कबीर इस उत्पीड़न को याद करते हुए तीन परीक्षाओं की बात करते हैं। तीन बार पतिया भरी लीना, हालांकि सिकंदर या किसी भी व्यक्ति विशेष का नामोल्लेख नहीं करते, वैसे ही जैसे नीरू नीमा और रामानंद के नाम भी कबीर को अपनी वाणी में नहीं मिलते। बहरहाल बादशाह ने कबीर को पतिया लिया, उसे कबीर की महिमा समझ आ गई। उनकी करामात से प्रभावित होकर वह स्वयं अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। साचा राम कबीर तुम्हारा, अब के राखियों जीव हमारा, काजी मुल्ला मरम न जाने, सृजन हारी तुम्हारी माने। सिकंदर ने कबीर को भेंटे देनी चाही, लेकिन जैसे ही ऐसी भेंटे स्वीकार करी, किसी से कुछ मांगे, प्रलोभनों के दृढ़ता पूर्वक नकार न सके। वह भक्त कैसा जो मांगे सो भगत न होई, मन दिन दृढ़ राखे निज जन सोई। सिकंदर को पर्चा देकर उसकी कसड़ी पर खरे उतरकर कबीर घर लौटे। उन्हें अपने राम पर विश्वास था और इस विश्वास पर कबीर के राम को दोनों एक दूसरे के चित्त में प्रेम और विवेक के उजियारे में चमकते शब्दों का रूप लिए सदा विराजमान है। दोनों एक दूसरे के साधक हैं। विरह की वेदना और मिलन का भय, विरह की वेदना और मिलन का भरोसा दोनों के मन में है। प्रीत की ऐसी पीर दोनों के मन में है। लोगों को भले ही आंगन की अबीर उड़ती दिखे, लेकिन दोनों की एक ही अंतस्विरा और कृतज्ञता के आंसू से भीगे हुए हैं। भक्त कबीर आगे आगे चल रहे हैं और हरि उनके पीछे चल रहे हैं। भगत ही पीछे हरि चली आवे, विरह के जानलेवा वेदना के साथ ही मिलन की रोमांचक कल्पना और उस कल्पना के कभी न कभी सत्य होने की अटूट आस्था। कबीर की साखी भरते कवि के पद पैंडे लागी, हरि फिरे कहत कबीर कबीर। लोक बड़ाई से तंग आकर कौतुक रचने वाले कबीर ने अपने अंत को भी कौतुक भरा बयान बनाने की ठानी। कहते हैं कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलना पक्का है और मगहर में मरने वाले को अगले जन्म में गधा बनता है। कबीर काशी के ही जुलाहे थे, देह त्याग के लिए नहीं। कई बार कहीं बाहर से आकर काशीवासी उन्हें नहीं करना था, लेकिन उन्होंने सच्ची रहनी और सच्ची भक्ति के बजाय महज काशी में मरण को स्वर्ग प्राप्ति की गारंटी बताने वाली मतिहीन सोच को व्यवहारिक चुनौती दे डाली। लोका मति के भेरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, इहे जन्म का लाहा, जू जल में पैस ननिक से, यू ठूरी मिल्या जुलाहा। राम भगति परी जाको, हित चित ताको अचिरज कहाँ, गुरु प्रसाद साध की संगति, जगति जीतई जाई जुलाहा। कहत कबीर सुनहु रे संतो, भ्रमी परे जिन कोई, जस काशी तस मगहर उसर, हृदय राम संति होई। ग्रंथावली राग धनाश्री पद 5 पृष्ठ संख्या 382-3। काशी में तन तजना ही अगर काफी है तो राम भक्ति तो बेकार ही ठहरी। सच यह है कि साधक सार्थक जीवन बिताने के संतोष के साथ कह सकता हूँ कि जब जन्मा था तब वैसा था, अब ऐसा ही हूँ। जल में जल जैसे मिल जाता है, वैसे ही मुझे मिल जाना है। आश्चर्य की बात नहीं, राम भक्ति और गुरु कृपा से जुलाहे ने जग जीत लिया है। कबीर की अखर छवि को रेखांकित करने के लिए उपर्युक्त पद का बार बार उपयोग किया गया, लेकिन उन्हीं कबीर का कथन भी यह है। जीव जल छोड़ बाहर भइयो मीना, पूर्व जन्म हो तप का हीना, अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तजिले बनारस मति मय भई थोरी सकल जन्म शिवपुरी गवाइया मरती बार मगहर उठी आइया बहुत बरस तप किया काशी मरन भैया मगहर का बासी काशी मगहर सम बिचारी ओछी भगति कैसे उतर सिपारी कहूँ गुरु गज शिव शुभ सभु को जाने मुआ कबीर रमत श्री रामे। श्री गुरु ग्रंथ साहब खंड एक पृष्ठ संख्या 326। पूर्व जन की तपहीनता के फलस्वरूप पानी से बाहर आ गई मछली सी दशा हो गई। हे राम अब मेरा क्या होगा। बुद्धपन से बनारस छोड़कर चला आया, सारा जीवन शिवपुरी में बिताने के बाद मरते वक्त मगहर का वासी हो गया। ऐसी ऊंची भक्ति के बूते क्या पार कर लूंगा जिसके कारण मैंने काशी और मगहर को एक समान लिया। अब मरते वक्त तो बस श्री राम ही आसरा है। पहला कथन तो कबीर की प्रचलित छवि के अनुकूल है, लेकिन दूसरे का क्या करें। जैसे कुछ लोग पूर्व जन्म तब हम ब्राह्मण होते को प्रक्षिप्त मानते हैं, वैसे ही इसे ही प्रक्षिप्त मान लें, क्योंकि ऐसे पद हमारी मनचाही कबीर छवि से मेल नहीं खाते। लेकिन लोकामति के भोरारी के साथ ही बाकी दोनों पद भी प्राचीन पांडुलिपि में उपलब्धता के प्रतिमान पर खरे उतरते हैं। आदि ग्रंथ समेत अन्य पुरानी पांडुलिपियां भी मिलती हैं। लगता है कि कुछ और लोग भी कबीर के साथ ही चलने वाले थे, लेकिन चले हमारे साथ सुनकर दाद देना की बात है, साथ चल देना है और बात है। तमाम लोग काशी आते हैं कि शिवजी के त्रिशूल पर बसी नगरी में देह त्याग करके स्वर्ग लाभ करेंगे। जिनका जन्म ही काशी में हुआ है वे क्यों स्वर्ग की मिली मिलाई गारंटी छोड़कर जुलाहे के साथ चल पड़े। काशी में रहकर तो जोगी जपी तपी सन्यासी सभी लोग परलोक दोनों की तरफ से निश्चिंत रहते हैं। काशी तजते कबीर ऐसी निश्चिंतता की खबर लेना नहीं भूले। वे क्यों काशी तजे मुरारी जोगी जती जपी सन्यासी मठ देवल बसी परसे काशी तीन बार जे नित प्रति न्यावे काया भीतर खबरी न पावे देवल देवल फेरी देही नाम निरंजन कबहू न लेही चरण बिरद काशी को न देहू कहे कबीर भल नर कहीं जयहू। ग्रंथावली राग सोरठी 4 पृष्ठ संख्या 319। कबीर ने पूरा पाया और पूरा ही देने की कोशिश की। अधूरापन कोशिश में नहीं पाने वाले को समझ में था और है। कबीर ने छाती ठोकर कहा कि जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन निरोहा रे निहोरा रे। साथ ही काशी को याद में काशी की याद में जल बिन मछली की तरह तड़पे ओछी भगति को कोसा भी। साहस दोनों कथनों में था। सामाजिक मान्यताओं को प्रश्नबद्ध करने के लिए जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा साहस अपने मन की ऐसी बातें कहने के लिए चाहिए जो आप जानते हैं कि आप जैसे लोगों को नहीं सुहाएगी। पूरेपन के साधक कबीर की पहली बात तो अधूरेपन के साधकों को धर्मगुरु या क्रांति गुरु की छवि के अनुकूल लगी, लेकिन दूसरी उलझन में डालती रही। धर्मगुरु का उपदेश पढ़ने पढ़ाने की बजाय संवेदनशील मनुष्य की कविता पढ़ें तो न राम के चरणों का विरद काशीवास को देने से इनकार करने वाला आत्मविश्वास प्रक्षिप्त है और न काशी मगहर की समान मान लेने के कारण अपनी भक्ति की ऊंची कहती आत्मभत्सरना। कवि हो या उपदेशक, धर्मगुरु हो या क्रांतिकारी, कुछ भी होने के पहले मनुष्य मनुष्य होता है। कबीर को या किसी को भी अपनी मनचीती क्रांति का झंडा बनाने के फेर में उसकी मनुष्यता छीन लेना काफी अमानुषिक हरकत है। काशी कबीर के लिए स्वर्ग की गारंटी भले न रही हो, उनके बचपन की, उनकी युवावस्था की, उनके राग विराग की स्मृति अवश्य थी। कोई भी नगर या गांव वहां जन्मे पले बढ़े इंसान के लिए सिर्फ बाहरी भूगोल नहीं होता, वहां के उसके घट भीतर निवास करता है। वह नक्शे पर बना एक नामालूम सा बिंदु नहीं होता, वह दुनिया जहान में आपकी अपनी जगह का रूपक होता है, उसी जगह का जिसे आप जिंदगी भर तलाशते रहते हैं। इस तलाश में आप उस रूपक की ओर बार बार लौटते हैं जो आपका शहर है। आप बहुत कोसते हैं अपने शहर को, गांव को, मजाक उड़ाते हैं उसका, लेकिन वह तो आपका बचपन ठहरा। आप कितनी भी दूर क्यों ना भागे वह आपका पीछा करता ही रहेगा। कितनी ही विरक्ति क्यों न दर्शाएं, उसे कितना ही हास्यास्पद बल्कि भयानक क्यों न ठहराएं, आपका नगर दुनिया के दूसरे छोर तक आप अपनी
सारी हास्यास्पदता और भयानकता साथ लिए चलता आता है। आपके सपनों में, स्मृतियों में, शब्दों में और आपकी विरक्ति को मुंह चढ़ाते आपके आंसुओं में। और जब सभी अधूरी पूरी सकल विफल तलाशें खत्म हो जाने की होती हैं, तब तो खासकर आपका शहर आपको बुलाता है। जिंदगी भर आप उसे कितना ही क्यों ना कोसते रहे हो, जिंदगी की आखिरी छोर पर आप उसे प्यार करना चाहते हैं। उसने उसके लिए तो तड़पते हैं जो जन भिन मछली। और ऐसी तड़प की छड़ों में कबीर की किसी कविता में आई काशी की किसी के लिए लाहौर बन जाती है, तो किसी के लिए दिल्ली, किसी के लिए फरीदाबाद, तो किसी के लिए ग्वालियर। कबीर धर्म प्रवर्तन नहीं कर रहे थे, वे कविता में अपना आप खोल कर रख रहे थे। आत्मविश्वास भी उनके आत्म अंश का है और आत्मभत्सरना भी। स्वर्ग की गारंटी हो ना हो, काशी के जुलाहे कवि के लिए काशी उसकी अपनी नगरी जरूरी थी। कबीर राम के भक्त थे, स्वर्ग पाने के लिए, भक्ति के पाने के लिए काशी से प्रेम में उनके राम का भी अपमान था और उनकी काशी का भी। लेकिन कबीर प्रेम के कवि भी थे, काशी से उन्हें प्रेम था, इसलिए नहीं कि वे काशी उन्हें मोक्ष दिलाने वाली है, बल्कि इसलिए कि काशी ने उन्हें जीवन दिया था। ऐसे जीवन को छोड़ना पड़े और यह छोड़ना भक्ति का प्रमाण भी माना जाए, परिणति भी, काशी के कारण मोक्ष नहीं मिलता, यह बयान देने के लिए यह भूलना पड़ जाए कि सकल जन्म काशी बिताया तो जिंदगी के दूसरे छोर पर खड़ा काशी का प्रेम कवि ऐसी भक्ति को ओछी न कहे तो क्या कहे।
हेलो। अपने घर गांव से प्रेम घृणा के संबंध की अनुभूति कितने स्वाभाविक मानवीय अनुभूति है और इस संबंध को कहना कविता का कितना सार्वभौम विषय, यह कहने की जरूरत नहीं। हाँ, यह जरूर सोचना चाहिए कि हिंदी कविता में घर गांव की जबरदस्त व्यापसी के दिनों में भी कवियों आलोचकों को हिंदी के आदि कवि की यह कविता याद क्यों नहीं आई, जो शायद इन्हीं के घर के नॉस्टेल्जिया की आदि कविता भी थी। वजह शायद यही है कि कबीर ठहरे उपदेशक, धर्म के या क्रांति के, उनकी रचना में कहां कविता और कहां नॉस्टैल्जिया। आमी नदी एक किनारे मगहर है, दूसरे ओर कसरौल या कसरबल। कहते हैं कि कबीर यहीं आकर रहते थे, यहां धूनी मंदिर है जहां कबीर ने एक बार फिर गोरख को विवाद और करामात दोनों ठहराया। आओ कबीर गोष्ठी करे कहकर गोरख ने त्रिशूल हवा से टांग दिया। जवाब में काशी के जुलाहे कबीर ने धागा हवा में खड़ा कर दिया। 500 मूर्तियों की प्यास बुझाने के लिए गोरख तो कमंडल भर ही पानी जुटा पाए, कबीर ने कुआं ही खोल दिया। गोरख माने गए कि कबीर बढ़कर हैं। कुआं आज तक है, पानी बहुत ही मीठा है और था। मैंने अप्रैल 1987 में किसी दिन पिया था। जीवन भर कौतुक देखते, उन पर टिप्पणियां करती, कभी कभी स्वयं भी कौतुक रचते रहे, कबीर की मृत्यु भला कौतुक रहित कैसे हो सकती है। जीवन भर खुद को न हिंदू न मुसलमान बताते रहे, कबीर को तय करना ही था कि अंततः वह हिंदू है या मुसलमान। वह न भी चाहे तो उसके भक्त प्रशंसक तय करेंगे। वीर सिंह बघेल ने नेतृत्व में हिंदू कहेंगे कि कबीर हमारा, क्योंकि वैष्णव ढंग से बिताया था जीवन। बिजली खां के नेतृत्व में मुसलमान कहेंगे कि जीवन जैसे भी बताया हो, जन्म तो मुसलमान का ही पाया था, सो कबीर हमारा। और अंततः कबीर की देह गुजरेगी कबीर की नितांत निजी त्रास्ती से, दोहरी अंत्येष्टि से। जग भर को जीत लेने वाले आम तौर से अपने पीछे चलने वालों से हार ही जाते हैं। जी जी कर मरने वाले, मर मर कर जीने वाले कबीर के साथ भी दोहरी अंत्येष्टि के बहाने यही होना था। कबीर स्वयं तो जिज्ञासा खोज भक्ति का अमृत पीकर मर जीवा बने, लेकिन कबीर वाणी का अमृत पीने का दावा करने वाले शिष्य कबीर की देह पर झगड़ने से नहीं चूके। जीवन यात्रा के अंत में आने वाले कौतुक का पूर्वाभास कबीर को शायद था, पंथ तो उन्होंने रचा नहीं। लोग भिड़ाई से पिंड छुड़ाने की कोशिशें भी खूब की, लेकिन फिर भी शिष्य और अनुयायी तो उनके साथ लगे ही थे। उड़ने के पहले ही हंस को दिखने लगा था कि बाद में क्या होने वाला है, शिष्य क्या करने वाले हैं। हिंदू कहे हम ही ले जारो तर्कु, तुर्क कहे मोर पीर, दो आए दीनन में झगड़े देख हंस कबीर। बीजक
पद 90 पृष्ठ संख्या 141। यदि यह पद किसी ने बाद में भी कबीर वाणी से जोड़ दिया हो तब भी बात तो अपनी जगह रहती ही है। कबीर को अपने अनुयायियों शिष्यों के बीच अपनी विफलता का एहसास होने लगा था। वे देख पा रहे थे कि सांचा शब्द कबीर का और उसमें व्यंजित भक्ति भले ही बटने में इनकार करती रहे, पार्थिव देह का तो बटना ही होगा, जलना भी होगा और गड़ना भी होगा। अंतकाल का विवरण देते अनंतदास एक बार फिर से बताते हैं कि कबीर के जीवन के शुरुआती 20 बरस का समय धोखे में गया। अनंतदास का आशय है से स्पष्ट है कि 20 बरस कछु तप नहीं कियो, इसके बाद पूरे 100 बरस कबीर ने भक्ति की। अब आखिर में अंत्येष्टि को लेकर होने वाले झंझट का एहसास है कबीर को और वे स्वयं ही इस झंझट का निपटारा कर रहे हैं। कैसे लग रहा होगा कबीर को उस वक्त, शायद वैसा ही जैसा 14 से 15 अगस्त 1947 के रात जश्न आजादी से दूर दो चार साथियों के साथ कोलकाता के हैदरी हाउस में चुपचाप सोते गांधी जी को लगा होगा। कबीर खुद ही 32 बोझ फूल मंगा कर रहे थे और भाई तुम जला लेना, तुम गाड़ लेना, हिंदू तुर्का पानी आटी तुम जालीजियो, तुम दीजियो माटी, बोझ 32 का फूल मंगाया, तले ऊपर ही सैन कराया, सब संतन मिली नाचे गावे, ताल पखावत संस बजावे, अमर भयो छूटियो न शरीरो, भयो सैंदही दास कबीरो, भगतन मांझ अचंभो भैया, फूल देखी अपने घर गईया। कबीर को अपने घर जाना था, उन्हें क्या फर्क पड़ना था पीछे छूट गए फूल जलाए जाए या गड़े जाए। खुद कबीर एन उसी दिन चले आए या 4 दिन और इस लोक में बिता ले, कुछ दिन गुमनामी की जिंदगी बिताना, चुपचाप भजन करना उस साधक को अच्छा ही लगना था जो जीवन भर लोक बिड़ाई से पिंड छुड़ाने की कोशिशें करता था, अपने नाम को यूं ढापने की कोशिश करता था जो कुलयंती नारी गर्भ ढापती है। अच्छा ही था कि बाकी के दिनों शिष्यों की श्रद्धा और प्रशंसा के साथ नहीं बस अपनी प्रज्ञा और साधना के साथ ही बिताए। उसके बाद देह को अग्नि को अर्पित किया जाए या भूमि को, क्या फर्क पड़ता है। जिन्हें फर्क पड़ता है उन्हें बता दिया कि भाई ये रहे फूल जलाओ या गाड़ो, बंदा यह चला गया। कबीर के शिष्य ताल पखावत और शंख बजाते रहे और कोठरी के चादर ओढ़ जा लेटे कबीर चुपचाप उठे और चल दिए। शिष्यों को उन्हीं की देह नहीं बस फूल ही मिले। कुछ कुछ ऐसी ही मीरा लाल देद और चैतन्य महाप्रभु ने किया था। लाल देद ने एक बड़ा तगाड़ा मंगाया और उसमें जा बैठी, ऊपर से ढक लिया और उस बड़े बर्तन को कुछ देर बाद ढक्कन हटाकर देखा गया तो लाल देद समा चुकी थी। द्वारिका में निवास कर रही मीरा के दरवाजे राणा के भेजे ब्राह्मणों ने अनसर ठार कर बैठे गए थे कि राणा को माफ करो और घर वापस चलो। मीरा भजन करने नटनागर के सामने गई और प्रतिमा में समा गई। चैतन्य पुरी के जगन्नाथ जी में समा गए। कबीर ने समाने के लिए बोझ 32 फूल चुने, अपने प्रिय शिष्यों के बीच फूलों के रूप में अपनी देह स्वयं बांटते। अपने घर जाते जाते कबीर शायद फिर से रोए भी होंगे, फिर से याद की होगी अपनी कविता, मैं रोवो यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। बीजक साखी 180 पृष्ठ संख्या 162। अकारत नहीं था कबीर का रोना, निराधार नहीं था शब्द पर उनका विश्वास। शब्द विवेकी तो कबीर को सचमुच तब तक रोएगा जब तक शब्द रहेंगे।